लीला ने अरमान और नव्यांशी की सगाई 3 दिन बाद रखी थी। ये सुनने के बाद वंश राजावत फैमिली से और भी नाराज़ हो गया था। बहुत मुश्किल से रात को आराध्या ने उसे नव्यांशी और अरमान के रिश्ते के लिए मनाया था, पर लीला की हरकतों के बाद वंश ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि नव्यांशी को अरमान से शादी करनी चाहिए या ना। सिर्फ वंश और वेद ही गुस्से में नहीं थे। जब देवेश के ज़रिए अरमान को सगाई का पता चला और उसने उसे उदयपुर आने को कहा, तो अरमान भी काफ़ी गुस्से में था। इस वक्त वो देवेश से ही बात कर रहा था जिसने उसे उदयपुर आने के लिए कहा था। आप लोग मुझसे पूछे बिना सब कुछ कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये सगाई मेरी और नव्यांशी की है, आप लोगों की नहीं। मैं नहीं आ रहा हूँ और ना ही नव्यांशी आएगी, अरमान गुस्से में तेज़ आवाज़ में बोला। नव्यांशी इस वक्त अरमान के सामने ही खड़ी हुई थी। वो परेशान निगाहों से अरमान को देख रही थी। नव्यांशी को इस वक्त दिल ही दिल में यही डर सता रहा था कि अरमान इस बात का गुस्सा उनके रिश्ते पर ना निकाले। दूसरी तरफ से देवेश ने कहा, ये सब तो तुम्हें उस लड़की के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले ही सोचना चाहिए था। मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था। मैं अब इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूँ, घर के बड़ों ने फैसला ले लिया है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता था कि मेरे मामले में आप कुछ नहीं करने वाले हैं। आगे से इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ, अरमान ने जवाब दिया। वो कॉल कटता उससे पहले दूसरी तरफ से देवेश जल्दी से बोला, देखो अरमान, तुम इस तरह नहीं कर सकते हो। सगाई के इन्विटेशन कल सबको भेज दिए जाएंगे और बाकी तैयारी भी कर ली गई है। ऐसे में तुम पीछे कैसे हट सकते हो? अगर तुम्हारी सगाई में तुम ही नहीं आओगे तो कितनी बेइज्जती होगी। इसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। दूसरी बात, मुझे मिस्टर चौहान की तरफ से कोई कॉल नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सब कुछ तैयारी अपने आप ही कर ली और उन्हें भी एज अ गेस्ट इन्वाइट कर रहे हैं? अरमान ने आंखें बड़ी करके कहा। देवेश के कोई जवाब ना देने पर वो खुद ही समझ गया था। अरमान ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे आप लोगों से इसी तरह की घटिया हरकत की उम्मीद थी। जो करना है कर लीजिए, मैं नहीं आऊँगा। अरमान ने सगाई में आने से साफ मना किया और कॉल कट कर दिया था। इस वक्त वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। नव्यांशी ने प्लीडिंग आईज से देखा और उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ा दिया था। प्लीज़ शांत हो जाओ, नव्यांशी ने धीरे से कहा। क्या शांत हो जाओ? तुम्हें देख नहीं रहा वो लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हें जानकर यकीन नहीं होगा कि उन्होंने मिस्टर चौहान तक को इस अरेंजमेंट के बारे में नहीं बताया। तुम्हारी वजह से मिस्टर चौहान भी उनके सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। नव्यांशी, अभी सोच लो, अगर हम उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो वो इसी तरह हमें मैनिपुलेट करते रहेंगे और हमारे ज़रिए मिस्टर चौहान और शिवांशा को भी, अरमान ने उसे समझाते हुए कहा। आज तक राजावत फैमिली अरमान का इस्तेमाल नहीं कर पाई थी, इस वजह से उसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसी का नाम लेकर राजावत फैमिली वेद को फोर्स कर रही थी। नव्यांशी ने कुछ पल सोचा और कहा, मैं भाई से बात करूँ? इनफैक्ट हम दोनों करते हैं। ठीक है, अरमान वेद से बात करके फ़ैसला लेने के लिए मान गया था। नव्यांशी ने कॉल करने से पहले टाइम देखा। मोस्टली ये समय ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस जाने का होता था। थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं, जब भाई अकेले होंगे, तब तक ब्रेकफास्ट करते हैं और अपना गुस्सा शांत रखो, नव्यांशी ने उसे समझाया। नव्यांशी अरमान को अपने साथ बाहर डाइनिंग एरिया में लेकर गई, तो वहीं वेद ने ऑफिस जाने से पहले शिवांशा को बाहर बुलाया था। उनके जाने के बाद आराध्या और वंश डाइनिंग एरिया में अकेले रह गए थे। आराध्या खोई हुई निगाहों से दरवाजे की तरफ देख रही थी, जबकि वंश अभी भी गुस्से से बड़बड़ा रहा था। वो तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे हम इस रिश्ते में कुछ मायने ही नहीं रखते हैं। मुझे उस फैमिली से यही उम्मीद थी, तभी मैं इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन आप लोगों को मेरी बात कहाँ समझ आएगी? अब देख रही हो ना क्या हो रहा है, वंश दांत पीसते हुए बोला। वो आराध्या से जवाब की उम्मीद कर रहा था, लेकिन आराध्या बिल्कुल चुप थी। वंश इससे और भी चिढ़ गया था। उसने आराध्या की नज़रों को फॉलो किया तो वो दरवाजे को देख रही थी। वंश ने आराध्या का हाथ पकड़कर झुंझलाया और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। मैं कुछ कह रहा हूँ उसका जवाब देने के बजाय बाहर क्या देख रही हो? वंश ने पूछा। वंश के इतना गुस्से में होने के बावजूद आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, तुम इन सबको छोड़ो ना, क्यों इनके चक्कर में इतना स्ट्रेस ले रहे हो? भाई सब कुछ संभाल लेंगे। तुमने देखा ना भाई कितने चेंज हो गए हैं? मुझे नहीं पता था वो इतने रोमांटिक हैं। देखा उन्होंने कितने प्यार से ऑफिस जाने से पहले भाभी को अपने पास बुलाया? वंश ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेकर छोड़ी। आराध्या के सामने उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर वो इतना सीरियस डिस्कशन कर रहा था और उसे वेद और शिवांशा के रिश्ते की पड़ी थी। वंश को उसकी बातों में इंटरेस्ट लेते ना देखकर आराध्या ने उसके कंधे पर मारा और उसे घूरते हुए बोली, ऐसे बोरिंग एक्सप्रेशंस मत दो, तुमने कभी किया है ऐसा मेरे लिए? कितना रोमांटिक लगता है ऑफिस जाने से पहले एक छोटी सी प्यारी सी मुलाकात। छोटी सी प्यार भरी मुलाकात के बाद भाभी के लिए पूरे दिन भाई का इंतजार करना आसान रहता होगा। कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रही तुम? और मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम मेरे साथ ही तो ऑफिस जाती हो, वंश ने बोरियत भरे लहजे में कहा। हाँ, लेकिन केबिन तो अलग अलग है ना, बहुत बार मैं घर पर रहती हूँ और तुम अकेले ऑफिस जाते हो, लेकिन तुमने मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया, आराध्या ने उससे नजरें फेरते हुए मुंह बनाकर कहा। ठीक है तो अब कर देता हूँ, वंश ने मुस्कुराकर कहा और आराध्या की चेयर को खींचकर उसका मुंह अपनी तरफ कर लिया था। आराध्या के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। वंश ने हल्के अंदाज में कहा, काम के चक्कर में हमारी लाइफ कुछ ज्यादा ही बोरिंग नहीं हो गई? इससे अच्छा तब का टाइम था जब हम दोनों मिले थे और मैं कंपनी में बस एक इंटर्न के तौर पर काम करता था। भाई को कहता हूँ कि मेरा डिमोशन कर दो, या फिर ये कैसा रहेगा कि तुम्हारी पोजीशन मैं ले लेती हूँ और तुम मेरे असिस्टेंट बन जाना?
आई स्वेयर, एक मिनट के लिए भी तुम्हें खुद के केबिन से बाहर नहीं जाने दूंगी, आराध्या ने आई विंग करके कहा। अच्छा जी, मेरा डिमोशन करवाकर मैडम को खुद प्रमोशन करना है, वंश ने मुंह बनाया और अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली थी। जहां अंदर आराध्या और वंश आपस में रोमांस कर रहे थे, तो वहीं शिवांशा वेद के बुलाने पर बाहर आ गई थी। शिवांशा तेज कदमों से चलकर वेद के पास गई, जो गाड़ी के दरवाजे से सटकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। शिवांशा जल्दी से जाकर वेद के गले लग गई थी। वेद ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, जल्दी से अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करो, क्योंकि मुझे वंश और आराध्या की तरह तुम्हारे साथ ऑफिस जाना है। क्या मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन कर सकती हूँ? शिवांशा ने हैरानी से अपना सिर उठाकर पूछा। हाँ बिल्कुल, अपनी एसएटी पढ़ा लिखा रहा हूँ, पूरा काम निकलवाना है तुमसे, वेद ने हल्के लहजे में कहा। मुझे उस दिन का इंतजार है, आई प्रॉमिस। आप पूरी शिद्दत से यूनिवर्सिटी जाकर आपके साथ रहने के लिए एजुकेशन कम्प्लीट करूंगी, शिवांशा ने जवाब दिया। दैट्स लाइक माई गर्ल, वेद ने उसके नाक से अपने नाक को टच करके कहा। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे की तरफ थे और वेद ने शिवांशा की लोअर बैक पर अपने दोनों हाथ रख रखे थे। वो दोनों बातें करने में इतना खोए हुए थे कि उनका ध्यान इस तरफ भी नहीं गया कि आराध्या और वंश भी बाहर आ चुके थे। उन्हें इस तरह साथ में बातें करते देखकर आराध्या और वंश थोड़ा दूर ही रुक गए थे और मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। क्या लगता है वंश, लव बर्ड्स को डिस्टर्ब करना चाहिए या नहीं? आराध्या ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा।
अगर नहीं करेंगे तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे और पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। बाकी उन दोनों को इस तरह साथ देखकर अच्छा लग रहा है। अब मैं कह सकता हूँ कि भाई भाभी का ख्याल रखते हैं, वंश ने सिर हिलाकर कहा। वंश और आराध्या पार्किंग एरिया की तरफ जा रहे थे। उस तरफ जाते हुए वंश जानबूझकर जोर से खांसा, जिसे सुनकर शिवांशा जल्दी से वेद से दूर हो गई थी। शाम को मिलते हैं, ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी चली जाना। आई नो मैंने शॉपिंग का प्रॉमिस किया था पर टाइम नहीं मिला। फिर भी वार्डरोब में काफी सारे कपड़े हैं, साड़ी पहनकर यूनिवर्सिटी मत जाना, वेद उसे हर एक चीज ऐसे समझा रहा था जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो। शिवांशा ने उसकी बात पर हामी भरी। प्रतीक वेद के दिए गए कामों में बिजी था, इस वजह से वेद वंश और आराध्या के साथ ही ऑफिस जा रहा था। उनके जाने के बाद शिवांशा अंदर आई और उसने यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपने लिए पेस्टल येलो व्हाइट कलर का सूट निकाला। दूसरी तरफ जैसे ही वेद ऑफिस पहुंचा, उसके पास नव्यांशी का कॉल आ गया था। वेद उसके इस तरह कॉल करने का कारण अच्छे से समझता था। वेद ने कॉल रिसीव किया और गहली सांस लेकर कहा, तो तुम तक भी न्यूज पहुंच ही गई है। बिल्कुल भाई, मुझे सच सुनना है। उन्होंने बिना पूछे सब कुछ अरेंजमेंट किया है ना? नव्यांशी ने सीधे सीधे पूछा। फोन का स्पीकर ऑन था और अरमान भी उनकी बातें सुन रहा था। नव्यांशी के बोलते ही अरमान ने कहा, मिस्टर चौहान, आपको उनकी वजह से मजबूर होने की जरूरत नहीं है। मैंने सगाई में आने से साफ मना कर दिया है। जब मैं ही सगाई में नहीं जाऊंगा तो फिर उस एंगेजमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम उनके हिसाब से नहीं चलने वाले हैं। और तुम एंगेजमेंट में क्यों नहीं आओगे? क्या तुम्हें नवी से सगाई नहीं करनी अरमान? वेद ने हल्के लहजे में पूछा। अरमान और नव्यांशी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। उन्हें यही लगा था कि उनकी तरह वेद भी इस सगाई के लिए तैयार नहीं होगा। उन दोनों के अचानक चुप हो जाने और कोई जवाब ना देने पर वेद बोला, मैं तुम्हारी फैमिली से बात करने के लिए शाम को तुम्हारे घर जाने वाला हूँ अरमान। तुम दोनों को साथ रहना है तो फिलहाल एंगेजमेंट कर लो, शादी जब मन हो तब कर लेना, एंगेजमेंट हमारी तरफ से होगी। लेकिन मिस्टर चौहान, ये बहुत जल्दी है, मैंने अभी ठीक से सोच भी नहीं। पहले मुझे इस रिश्ते के बारे में जल्दबाजी में अनाउंस करना पड़ा और अब सगाई, अरमान ने हल्की झिझक के साथ कहा। सोचकर, क्या तुम इस रिश्ते को लेकर श्योर नहीं हो? वेद ने भौहें सिकोड़कर पूछा। मैं श्योर हूँ, पर मुझे हव्यांशी के लिए डर लगता है। जिस तरह से मेरी फैमिली वाले अभी से उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाद में क्या होगा? अरमान ने नव्यांशी की तरफ देखकर कहा। बाद में ये होगा कि तुम दोनों अपने घर में एक साथ उनसे दूर रहने वाले हो। कोई नव्यांशी को कंट्रोल नहीं करेगा। तुम पिछले लंबे समय से उसके साथ हो, क्या तुम्हें इतना समझ नहीं आया कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है? वेद ने आंखें घुमाकर कहा। अरमान अभी भी ठीक से फैसला लेने के लिए हिचकिचा रहा था। फिर उसने नव्यांशी की तरफ देखा, जो अरमान के नानू कर करने की वजह से परेशान हो गई थी। ठीक है, अगर अरेंजमेंट आपकी तरफ से है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अरमान ने आखिर हाँ कह ही दी थी, जिसे सुनकर नव्यांशी इतनी खुश हो गई कि उसने तुरंत उसी वक्त अरमान को गले लगा लिया था। अरमान के हाँ कहने पर वेद ने कॉल कट कर दिया था। उसके बाद वेद ने देवेश के नंबर निकलवाए और उसे आज शाम मिलने के लिए उनके घर आने के लिए कहा। देवेश ने ये बात तेजिंदर और लीला को बताई। देवेश को वेद का घर आना काफी अजीब लग रहा था। मैं मना कर देता हूँ भाई साहब, देवेश ने हिचकिचाकर कहा। मना क्यों कर रहे हो? अब वो हमारे रिश्तेदार हैं और मिलना जुलना लगा रहेगा। मुझे लगा था कि वो इस बारे में बात करने के लिए मुझे कॉल या मैसेज करेगा, लेकिन तुम्हें कॉल किया। खैर कोई बात नहीं, गीतिका से कहो कि उनके आने के लिए तैयारियां शुरू कर दे, उन्हें भी पता चले कि राजावत परिवार की खातिरदारी कैसी होती है, तेजिंदर ने सिर हिलाकर कहा। लीला वहीं पर खड़ी हुई थी और इस वक्त गुस्से में तेज सांस ले रही थी। तेजिंदर ने वेद के देवेश को कॉल करने का मतलब नहीं समझा, पर लीला को सब अच्छे से समझ आ रहा था। लीला और तेजिंदर ने कितनी भी जल्दबाजी दिखाई हो, पर वेद ने उनके बजाय देवेश को कॉल करके एक ही मूव में ये साबित कर दिया था कि अरमान उनका बेटा है और इस शादी से जुड़े फैसले लेने के लिए वो उनके बजाय देवेश को ही कॉल करेगा। वेद की इस हरकत से लीला बुरी तरह चिढ़ चुकी थी।